अब हम इस शऊर के साथ आयतों को शुरू करेंगे, क्या सोचकर कि अल्लाह ताला हमें हर सूरत से एक सबक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत मुजादिला भी इसको पढ़ते हैं और मुजादला भी पढ़ते हैं, यानी ग्रामर की रोशनी में ये दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير। नोट करिएगा हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह को। यकीनन अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, यानी इन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल इनकी माएँ नहीं बन जाती। इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। यानी जैसे सूरत अल अहज़ाब में मुंह बोले बेटे की बात की थी ना, तो यहाँ भी वही बात कर दी कि मुंह से कहने से कोई माँ नहीं बन जाती जैसे मुंह से कहने से कोई बेटा नहीं बन जाता। इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए हैं। यहाँ एक साइड का नोट लिख लीजिए, हमारे इंडो पाक कल्चर में भाई बनाने का बड़ा रिवाज है और बहन बनाने का बड़ा रिवाज है। फलां को मैंने जी भाई बनाया हुआ है, वो कौन है जो आपके भाई का दोस्त है? फुलां कौन है? उसको मैंने बेटा बनाया, वो कौन है जो आपके बेटे का दोस्त है? कहने का क्या है? याद रखिए, हिजाब की, सतर की और खलवत की सारी पाबंदियां उनके साथ ऐसे ही होंगी। जी फुलां को बहन बनाया हुआ है, मेरे शौहर ने मेरी दोस्त को बहन बनाया हुआ है। और अल्लाह रहम करे, कईयों को तो देखे राखी बंधन बांधते हैं एक दूसरे को हिंदुओं के उस त्योहार के दिन में जिस दिन वो अपने भाइयों को बांधती है। ये सब फरसूदा बातें, तौबा कीजिए। कभी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ? लिमिट क्रॉस होती, कहाँ जा रही हैं आप उनके साथ? नहीं, वो गैर नहीं है, उसको मैंने भाई बनाया हुआ है। हालात कैसा पेच चला कि कल उसी से शादी हो गई। यानी कल तक भाई बहन का रिश्ता दुनिया वालों में मारूफ था, सारी दोस्तों सहेलियों को मालूम है, और बाद में उसी के साथ शादी हुई और उसके बच्चों की माँ है आज वो औरत। कोई हर्ज नहीं उस शादी में, पहला गलत था, वो दुरुस्त नहीं था। तो ऐसी चीजों से अवॉइड करना है। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी कही हुई बात से रजू कर लें, तो इनके जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले किनाया है शोहर बीवी के ताल्लुक का, यानी कि प्रैक्टिकली हाथ बस लगाना। क्या करें? एक गुलाम को आजाद करना है, इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए, यानी उसके ऐसे गुलाम को आजाद कराने के पैसे नहीं, तो इसके जिम्मे 2 महीनों के लगातार रोजे हैं इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो, इस पर 60 मिसकीनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और इसके रसूल की हुक्म बरदारी करो, ये अल्लाह ताला की मुकरर करदा हदें हैं और कुफार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। नोट किया आपने? सिर्फ मुंह से निकले हुए एक हद से बड़े हुए जुमले का कफारा मुस्तकिल 2 महीने के रोजे, कंटिन्यू मुतताबिक। और अगर एक छूटे तो फिर जीरो पे आ गई बात। जैसे क्यू से निकल जाए तो दोबारा पीछे से लगना पड़ता है ना, ये हाल होगा। तो मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवी से बात करते हुए सोच के बोलें, और औरतों को भी। किसी को भी अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ से ये पैगाम है। इसके बाद अब इसी बुनियाद पे इस वाक़े को लेकर और कुछ और चीज़ों को लेकर, ख़ास तौर पर जो यहूद के साथ थी, तذكرہ है। इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहू, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे इनसे पहले के लोग जलील किए गए थे। और बेशक हम वाज़े आयतें उतार चुके हैं और कुफार के लिए तो जिल्लत वाला अजाब है। जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को उठाएगा फिर इन्हें इनके किए हुए अमल से आगाह करेगा जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है, जिसे ये भूल गए थे। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन शहीद, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। अलम तर अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है? 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर इनका चौथा अल्लाह होता है, ना पांच की मगर छठा वो होता है, और ना इससे कम और ना इससे ज्यादा की मगर वो साथ ही होता है जहाँ भी वो हो। फिर क्यामत के दिन इन्हें इनके अमाल से आगाह करेगा, इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। अलम तारा इल्लज़ीन नहु अनिन नजवा, अब महफिल के आदाब सिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इन चीजों को रखा है। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जो कानों में बातें करते थे और उनको इससे रोक दिया गया, वो फिर भी इससे रोके हुए काम को दोबारा करते हैं और आपस में गुनाह की और जुल्म व ज्यादती की और नाफरमानी पैगंबर की सरगोशियां करते हैं, और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्जों में सलाम करते हैं जिन लफ्जों में अल्लाह ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह हमें इस पर जो वो कहते हैं सजा क्यों नहीं देता, इनके लिए जहन्नुम काफी सजा है जिसमें ये जाएंगे, फबीसुल मसीर, बस वो बहुत बुरा ठिकाना है। आपने अखलाके नबी में वाक़ सुना था कि यहूद नबी की महफिलों में जब आते तो अस्सलाम वालेकुम की जगह सलाम वालेकुम कह देते कि तुम पर मौत को, उसकी तरफ इशारा, यानी नबी के सामने आके जुबान दबा के तौहीने रिसालत कर जाते थे, और अल्लाह ताला ने उन लोगों के साथ मामला करना सिखा दिया। साथ ही फिर महफिल के कुछ आदाब ईमान वालों को सिखाए गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजैतुम फ़ला ततनाजौ बिलइस्मि वलउद्वानि वमासियति रसूल, ऐ ईमान वालो जब तुम सरगोशी करो तो ये सरगोशियाँ गुनाह और जुल्म और ज्यादती और नाफरमानी पैगंबर की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी के काम की बातों पर सरगोशी करो, और इस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे, सिवाय इसके नहीं बुरी सरगोशियाँ शैतानी काम है कि जिससे ईमानदारों को रंज पहुँचे, वो अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखे। अल्लाह के नबी की वाज़ह हदीस है कि जहाँ तीन लोग हों तो दो लोग आपस में कान में बात ना करें। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारे नबी इतने तबीयत को समझने वाले, इंसानी साइकोलॉजी को समझने वाले थे कि फितरी सी बात है कि जहाँ तीन में से दो बात करेंगे तो तीसरे को लगेगा कि ये मेरी बात की जा रही है। ये है रहमतुल आलमीन, ये थे इंसान दोस्त नबी। आज के बारे के साथ लिख दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान दोस्त थे, बीवी दोस्त थे, घर दोस्त थे, हमने कुन छुरी बनना सिखाया लोगों को। ऐसे ऐसे वाक्यात मशहूर कर दिए जाते हैं, घर में आए तो सांप सूंघ गया, बच्चे कांपने लगे, बीवी थर्राने लगी, अब्बा आ गए, क्योंकि अब्बा जी दीनदार हैं। गलत है। देखिए आप नेक हो सकते हैं लेकिन आप दीनदार नहीं हो सकते जब तक आपका अखलाक अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ अच्छा ना हो। आगे फिर मजलिस की कुछ बातें, खास तौर पे आप सबके लिए भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहु फिल मजालिस, ए मुसलमानों जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जरा कुशादगी पैदा करो तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें कुशादगी देगा, और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो जाओ, यानी किसी को उसकी जगह से उठाकर किसी नए को बिठा दिया जाए तो उठ जाओ, अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह ताला हर उस काम से जो तुम कर रहे हो खूब खबरदार है। इतना प्यारा दीन और कौन सा होगा जो आपको महफिलों के अदब आदाब तक सिखा रहा है। अल्लाह हमें इस दीन को आम करने वालों में शामिल कर ले। आइए तदब्बर करते हैं पहली इब्तदाई आयात में अमल के नुक्ते। दुआ ताइफ के नाम पर एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दाफ़ कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास, इसको दुआ मुस्तदफीन भी कहते हैं। कभी आपको लगे आप दबी हुई हैं, घर में हैं, कोई रो भी डालता है, खवातीन आती हैं कहती हैं मर्द को गुस्से की आदत है, किसी को गाली की आदत है, कोई हाथ उठा देता है, कभी भी बेबस हो तो ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दाफ़ कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास, और इसी के आगे ऐसा ऐसा याद करते जाएं। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह हमें इसके याद करने का वक्त दे। मोमिनों के मतलब हुस्ने ज़न रखे क्योंकि सरगोशी बदगुमानी की वजह से होती है। शादी हालों में राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठे कभी कानों में बातें ना करें, वो देखो वो आई है, वो देखो दूल्हा की अम्मा क्या लग रही, फुला फुला, ये महफिल के आदाब के खिलाफ है। जिससे भी बदगुमान होंगे ना आपको उसकी अच्छी बात भी बुरी लगेगी, ये तो 100% बात है। एक ही खातून है, बेटी कहती इससे अच्छी औरत कोई नहीं, और बहू कहती इससे सख्त औरत कोई नहीं, फर्क किसका है, हमारे गुमान का फर्क है। इसी तरह दर्स में या आम मजालिस में बैठे तो कुशादगी पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए कुशादगी पैदा करेगा। कुरान से रहनुमाई, अल्लाह ताला का इल्म बेइंतहा और वसी है, हर चीज़ को घेरे हुए, इसलिए अल्लाह की हुदूद के मामले में अल्लाह से डरिए। हर इस अमल से खबरदार रहिए जो रोज़े क़यामत आपके लिए तकलीफ़ का बायस हो। हुस्नो मलाल शैतान की तरफ से है और इसको दूर करने का तरीका यह है कि अल्लाह पर भरोसा किया जाए। गौर व फिक्र के गोशे, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और इन पर अमल ईमान का हिस्सा है और यही मतलूब है, इससे ईमान बढ़ता और कामिल होता है। अल्लाह का डर इतनी बड़ी नेमत है कि ये घरों को टूटने से बचा सकता है। जब हम दीन के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को भी पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह दीन के आने से हमारे घरों का सुकून रुखसत नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे। आइए साहिजाम खुद अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे और बाकी घर वालों के लिए दुआएं भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे, तो घरों का असल सुकून पता क्या है? आज भी वही घराना पुरसकून है जहाँ दीन है। ना वहाँ दुनिया की भाग दौड़ है, ना चकाचौंध है, ना हर वक्त आवाज़ें हैं गैजेट्स की, ना शोरों खुल है। बच्चों को भी जब पाले, आप जरा सोचें कि बच्चे जब घर होते हैं या आप सब घर वाले घर होते हैं तो घर में क्या बातें आमतौर पर हो रही होती हैं? हल्ला गुल्ला, लड़ाइयाँ झगड़े बच्चे कर रहे हैं, या खाने पक रहे हैं, या मियाँ बीवी बैठ के इंडो पार्क में रिश्तेदारों पे बहस कर रहे हैं। ये होम स्वीट होम नहीं, होम स्वीट वो है कि जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे को देखे तो मुस्कुराएं, घर में मियाँ आए तो प्यार से सलाम करें, बीवी जवाब दे, मर्द के आने से पहले बीवी अपने आप को आरास्ता करे, साफ सुथरा रखे, घर ऐसा हो कि मर्द का घर आकर जाने को दिल ही ना करे, साफ सुथरा, हर चीज ठिकाने पे, खुशबू आ रही हो उस घर में, बिस्तर की चादर पे से भी सलवट निकली हो, किस मर्द का दिल नहीं करेगा घर आने पे? और अगर घर आकर सिर्फ बच्चों की लड़ाइयां ही आपने सुलझानी है और आपको अपना जूता ही नहीं मिल रहा है, एक जूता एक बेड के नीचे तो दूसरा पता नहीं किधर है, सुबह जा रहे हैं तो सॉक्स ही नहीं मिल रहे, तो झगड़े तो होने हैं। आप अपने आप को सलीके वाला करें, 80% काम तो इधर ही ठीक हो जाता है। जब बंदे को उसकी चीज़ें वक्त पे मिल जाती हैं, खाने के वक्त में खाना रख दिया, पीने पे पीना रखा, और अच्छी बीवी पता कौन होती है? जो अपने मियाँ से 15 मिनट आगे होती है। ये क्या बात हुई? ये हमारे बड़े कहते थे क्या कि बीवी को पता होना चाहिए कि अगले 15 मिनट बाद मेरे मर्द को क्या चाहिए, तो झगड़ा कहाँ से होना है, पहली चीज़ हाजिर हो। हम जब ये रस्सा कशी करते हैं ना, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं भी खातून हूँ आप भी हो, और हमारे पास दुख सुख के नाम का एक प्रोजेक्ट भी है, अक्सर झगड़े लड़ाइयाँ तलाक तक नौबत आ गई, जब उसके अंदर से खोद के देखे ना तो हमारा पोहड़पन भी होता है। ठीक है, कुछ मर्द भी खराब होते हैं, उनको नहीं कदर होती अच्छी बीवियों की, और कुछ दीन से भी दूर होते हैं, लेकिन आपका दीन क्या है? एक बुक है हमारे कोर्स में माशाल्लाह, अगर आप कभी सुनना चाहें ना, इस्लाम के सफ़ीर, छोटी सी बुक है, दारुस्सलाम ही की है, बीबी भी आप खरीद के पढ़ लें, लेकिन कहानी की तरह सुनने में मज़ा आता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह करवाई थी एटलांटा इंस्टीट्यूट से, उसमें वो सारे वाक़यात है कि बिगड़े हुए मर्दों को ख़वातीन ने कैसे दीन पे लाई, बिगड़े हुए बच्चों को माएँ कैसे प्यार से टैकल करें। तो मैं अक्सर ऐसी घरेलू किताबें ऑफ़र करती हूँ कि लोग सुने और लें और पढ़ें, क्योंकि हमें हिकमत नहीं आती। आपकी ऊन की रस्सियाँ भी उलझ जाती हैं ना, तो गुस्से में निकालेंगे, जल्दी में निकालेंगे और उलझेगी। पहली तो बात, थोड़ी देर इसको छोड़ दो, लेट इट गो, अब आप थक चुकी हैं ना, रुक जाए, फिर ज़रा फ्रेश होगी ना, खोले देखिएगा उसी के अंदर से सिरा निकल आएगा। लिखिए, जब इंसानी मामलात के सिरे ना मिले, शोहर बीवी को कई दफ़ा पता ही नहीं होता हम लड़ किस बात पे रहे हैं, झगड़ा क्या था, तो उस वक्त ज़रा लेट इट गो, सेपरेट हो जाए, घर में रहते हुए अलग हो जाए, कमरे को अलग कर दें, ज़रा उस जगह को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप किचन में निकल जाएं, वो जाकर अपना कंप्यूटर पे काम करें, गिव देम स्पेस। घर में कौन होता है? मियाँ बीवी और माँ बाप और बच्चे और बुजुर्ग और बच्चे, आमतौर पे किसी घर में यही होते हैं। कुछ जगह में हो सकता है अनमैरिड बहन भाई यानी फुफ्फो चचा भी होते हों, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। एक बात सीख लें, हर एक को उसकी जगह दें, दैट्स इट। हम कई रिश्तों में इसलिए नाकाम है कि हम किसी को वो जगह दे देते हैं जो देनी नहीं होती, और जिसको देनी होती है उसको दे देते हैं। स्पेस देना क्या होता है, लिव एंड लेट टू लिव, आप भी जिए मुझे भी जीने दे। शोहर बीवी को स्पेस दे, बीवी शोहर को दे, आप बच्चों को दीजिए, बच्चे आपको दें। ये जो हर वक्त सर पे सवार होना होता है ना, ये ठीक नहीं होता। अल्लाह माफ करे, कुछ बीवियां तो कह लीजिए कि वे वार्डन बन जाती हैं, और कुछ माएं तो पुलिसमैन बन जाती हैं बच्चों पे। उठो नमाज पढ़ी, अच्छा जब भी नमाज से कहना है ठीक है कहना है। हर नेगेटिव बात आपको अपने बच्चों की नजर आती है तो अच्छी भी तो कभी बोले। कभी आपने बोला बेटा आपने होमवर्क कर लिया, शाबाश बेटा, आज आप स्कूल से आते ही शावर ले, क्या खूबसूरत खुशबू आ रही है, माशाल्लाह मेरा बच्चा, इधर आओ गिव मी हग। कब ये टोन होती है? प्यार का इजहार करते हैं तो गुस्से में ही करते हैं, इट्स रॉन्ग। तो गिव स्पेस, अगर सास बहू को स्पेस दे दे तो मेरा नहीं ख्याल के साल के बाद वो उससे कहे कि जुदा कर दो, मुझे अलग घर चाहिए। हम स्पेस नहीं देते, सब कुछ देते हैं, इजहार भी कर देते, तोहफे भी देते, ईदियां भी देते, ईद के जोड़े भी लेकर देते, हम इफेक्शन भी दे देते, लेकिन स्पेस नहीं देते। तो लोगों को स्पेस देना सीखिए। तो अगली बात क्या है, सबसे अफसल सलाम अस्सलाम वालेकुम है, हाय बाय नहीं है, हेलो हाय हाय ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सलामती है, लिहाजा सलाम करने की आदत डालिए। जो दूसरों के लिए कुशादगी इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिए कुशादगी इख्तियार करेगा, और जो अपने भाई को जगह देगा, अल्लाह इसको जगह देगा। तो दिलों में भी जगह दीजिए, घरों में भी जगह दीजिए, आपकी एक डोमेन होनी चाहिए। डोमेन कहते हैं एक खास इलाका, इससे ज्यादा आप नहीं तनकीद कर सकती हैं अपनी बहू पर। बाज़ सासें हर बात पे तनकीद करती, क्या पहना क्या खाए, है ये पहन के किचन में आ गई, और अगर वो ना आए तो कहते हैं अच्छा जी बड़ी बेगम साहबा बनी बैठी है, काम ही नहीं कर रही। ये जो मजलिस में स्पेस देना है, ये जिंदगी में देकर देखिए अच्छी रहेगी। शौहर है बीवी को हर वक्त रोक डाल रहे हैं, नहीं बेगम कि आप जहाँ जाना चाहें जाइए, आई एम फाइन, आई डोंट वॉन्ट टू गो, यू कैन गो, आपको मैं कह रहा हूँ आप चली जाइए, इट्स ओके। आप भी मियाँ साहब को कभी थोड़ी सी स्पेस दे दें। और किसी ने कहा कि सबसे खूबसूरत जुमला जिससे बीवी का दिल खिल जाता है वो क्या है, कि बेगम आज डिनर बाहर करेंगे। ये देखिए आपके भी चेहरों पर जो मुस्कुराहट आई है। याद रखिए जो औरतें खाना पकाना छोड़ देती हैं ना, तो मर्दों को फिर उनकी को फिक्र भी नहीं रहती, इसलिए जरा सा अपने आप को सिक्योर रखने के लिए एटलीस्ट हर दिन में एक खाना तो खुद अपने हाथ से बनाकर खिलाएं, ताकि लोग आपके आदी रहें। चलिए आगे देखते हैं आयत 12 से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल। ये है वो बात जो अल्लाह के नबी से बात करने के लिए पहले से थोड़ा सा वॉर्न कर दिया गया। ए मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। हाँ अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, यानी ऑप्शनल है, कर लो तो अच्छा है, नहीं कर सकोगे तो फिर इट्स ओके। फरमाया क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? मसला हल हो गया, क्योंकि टाइम बहुत ले लेते थे आपका, और आप एक मसरूफ इंसान थे। आमतौर पे तो आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, लेकिन कभी नहीं भी रहते थे, लोग ख्याल नहीं कर पाते थे। बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ़ फरमा दिया, यानी ये कबूरी हुक्म था, कुछ दिन के लिए रहा, इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब क्या करो, फ़ाकीमुस्सलातवातुज़्ज़कातवातीउल्लाहवरसूलहू, तो आप बखूबी नमाजों को कायम रखो और ज़कात देते रहा करो, और अल्लाह ताला की और इसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। तुम जो कुछ करते हो इस सब से अल्लाह ताला खूब खबरदार है। क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी के हकूक को प्रोटेक्ट किया, और आपके वक्त का और आपकी चीज़ों का ख्याल रखा, और साथ ही सहाबा की तरबियत भी कर दी। आगे से वो किस्सा है जिसका यहूद के साथ ताल्लुक था। अलम तर इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह गजबनाक हो चुका है? ना ये मुनाफिक तुम्हारे ही हैं ना इनके, यानी मुनाफिक किसी का भी नहीं होता, दो कश्तियों का सवार कहीं नहीं जाता, वो पानी में गिरता है, इधर भी कश्ती ने चले जाना उधर भी इसने ढाम से पानी में गिरना है। तो बी डिसाइसिव, एक जगह फोकस होकर जीने के साथ ही जिंदगी का हुसन भी है। फरमाया के बावजूद इल्म के फिर भी झूठी कस्में खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, इन लोगों ने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। इनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है, इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नमी है, हमेशा ही इसमें रहेंगे। यौम यबसुहुमुल्लाहु जमीअ, जिस दिन अल्लाह तआला इन सब को उठा खड़ा करेगा, तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, अल्लाह ताला के सामने भी कस्में खाने लगेंगे और समझेंगे कि वो भी किसी दलील पर हैं। यकीन मानो कि बेशक वही झूठे हैं, इन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है और इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये शैतानी लश्कर है, नोट कीजिए, हिजबुल शैतान के वसफ, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। इसके बरक्स एक और इनकी आदत, इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन, बेशक अल्लाह ताला और इसके रसूल की जो लोग मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा जलीलों में से हैं। अल्लाह ताला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे, यकीनन अल्लाह ताला जोरावर और गालिब है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज़ ना पाएंगे, गो कि वो इनके बाप या इनके बेटे या इनके भाई या इनके कुंबे कबीले के अजीज़ ही क्यों ना हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है, अल्लाह हमारे भी दिलों में ईमान लिख दे, और जिनकी ताईद अपनी रूह से की है, अल्लाह हमें भी अपनी ताईद अता फरमा। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जिन्हें इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अल्लाह हमें भी इन जन्नतों में दाखिल करना जहाँ ये हमेशा रहेंगे। और रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है, अल्लाह हमें भी तुझसे राजी कर दे और तू हमसे राजी हो जा। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है खुदाई लश्कर, अल्लाह में हिज़्बुल्लाह में शामिल कर दे। आगाह रहो बेशक अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं। तदब्बुर और अमल करते हैं, अगर हक का साथ नहीं दे सकते तो हक की मुखालफत भी ना कीजिए ताकि आखरत की रुसवाई से बच सके। महफिल में किसी अच्छी बात की तरगीब या याद दहानी के लिए सरगोशी की जा सकती है, दुआ मांगते रहा करें कि अल्लाह हम तेरी रजा और जन्नत का सवाल करते हैं। कुरान से रहनुमाई, महफिलों में हर नए आने वाले का खुश दिली से इस्तकबाल करना, देखें एक दूसरे को स्माइल के साथ, कोई भी घर में आए कमरे से दूसरे में जब किसी को देखे स्माइल दे, या मैंने देखे स्माइल बहुत कम देते हैं लोग, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तरावी में अपने हाल में मगन है क्योंकि इबादत कर रहे हैं, स्माइल देने से तो बंदा दीनदार नहीं दुनियादार हो जाता है ना। आज रात अपने लिए अमल अभी लिख लें, आगे भी मिलते हैं अमल, एक अमल लिखिए, रात तरावी के लिए जाएंगी, हर सिस्टर जिससे आपकी निगाह मिले उसको देकर स्माइल देंगी, करेंगे इंशाल्लाह। आपकी भाईचारगी और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दुनियावी मसलहत के लिए नहीं। देखिए कोई किसी भी कल्चर की है, आपको जुबान तो नहीं हर एक की समझ आती, स्माइल की जुबान तो सबको समझ आती है, तो वो अरब हो गैर अरब हो, वो अजमी हो वो निगरों हो वो सोमाली हो वो देसी हो, सबको स्माइल कीजिए। अपनों को तो हो सकता है देख के थोड़ा बहुत हम कर ही लें हम जुबान लोगों के नाते से, लेकिन दूसरों को भी देख कर स्माइल दीजिए। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने का तकाजा है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुखालफों से मोहब्बत ना रखी जाए। गौर व फिक्र, नमाज सिर्फ अदा नहीं करनी बल्कि नमाज के तमाम हकूक की अदायगी करते हुए इसको कायम रखना है। अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक शख्स से दोस्ती करने वाले पर भी अल्लाह का गज़ब वाजिब हो जाएगा, इसलिए जब कोई अल्लाह को गज़ब ना करने वाला काम करे तो फौरन उससे अलग हो जाइए। जो जिस हाल में जिएगा उसे उसी हाल में मौत आएगी, इसलिए हर वक्त अपने हाल की परवाह करते रहिए। जो आदमी अल्लाह के दुश्मनों से दिली मोहब्बत रखे तो ये इस बात की दलील है कि इसके दिल में हकीकी ईमान नहीं है। अल्लाह हमारी इसलाह फरमाए। खूबसूरत थी सूरत मजादिला, ऐसे लगता है इन पारों को पढ़ते हुए ख़ास तौर पे कि ये हमारी डे टू डे लाइफ से मुतल्लिक है। अगली सूरत हशर है, 24 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ से देखिए सब्बाहा से जो सूरतें शुरू होती है ये भी उसी में से एक सूरत है, सब्बाहा या युसब्बिहु, पीछे भी थी 27वें पारे में, अब उनमें से एक ये सूरत है। سب بحل اللہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آپ بھی تسبیح کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب با حکمت ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفار کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے. غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے جو کہ شروع میں بتا دیا آپ کو، اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. پس اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقرر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ، تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے. کچھ درخت راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کاٹنے کا حکم دے دیا. وار ٹیکٹس تھی، جنگی حکمت عملی تھی، اتنا بڑا شوشہ بنا دیا یہود نے، ہائے ہائے یہ درخت کاٹتے. آج بھی درختوں کے حقوق ہیں، آج بھی لوگ کہتے جی پولیوشن ہو گئی، سبزہ رکھیں، اور مسلمان کی گردن چاہے درخت سے بھی زیادہ آسانی سے کاٹ دی جائے، اس پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو وہاں بھی کل یہ معاملہ تھا، آج بھی یہی تھا. غزوہ بنی نذیر ہوا تھا، اسی کے دوران اب کیا ہوا، مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو وہ مال جو ملا اس کا کیا کیا جائے. وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، جس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں مسکینوں کا، اور مسافروں کا. یہ باتیں آپ نے سورت انفال میں بھی پڑھی، مال غنیمت کی بانٹ میں، کہ مال جب آ جاتا ہے ہاتھ میں تو اس کی بانٹ ہوگی. اب یہاں لکھیے، اس سورت کا ایک مین تھیم اسلام میں مال کی بانٹ، منی مینجمنٹ. آپ اس کو اکنامیکل سیٹ اپ آف اسلام کہہ سکتے ہیں، سنیے گا، اور اس کو آج آپ ویریفائی کریں گے کہ اسلامک اکنامیکل سسٹم ہی از دا بیسٹ. کیسے؟ کئی لائق ہوں نہ دول تمبین لگنیا امین کم، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے. کیا پتا چلا کہ منی کو چند ہاتھوں میں نہیں رہنا چاہیے. اسلام کا صدقات، زکوٰۃ، عشر، اور اسی طرح سے آگے اب یہ جو مال فیع اور مال غنیمت کا جو نظام ہے نا، یہ کیا چاہتا ہے؟ منی فلرش ہو، ایسے فلیش. آپ فوارہ سا بنا کے پانی کا یوں ڈالتے ہیں تو وہ دور تک جاتا ہے. آپ امیجینیشن میں لائیے، ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہے، اس میں پانی کہاں گر رہا ہے؟ اسی جگہ گر رہا ہے. بعض دفعہ نیچے رکھا ہوا بکیٹ یا جو بھی کوئی چیز ہے بھر جاتا ہے تو اوور فلو ہونے لگتا ہے. آپ اسی ٹوٹی کے آگے ایک چھوٹا سا پائپ لگائیے، اور پائپ کو آگے سے ایسے دبائیے تو کیا ہوگا، جو میں بچپن میں بڑا مزہ آتا تھا، فرش دھوتے ہوئے اور گارڈن کو پانی دیتے ہوئے، آپ جب یوں کریں گے نا فلیش ہو کے پانی ادھر کے. اب میں اگر یہاں کھڑی تھی، یہاں ٹوٹی تھی، تو پانی ادھر ہو سکتا ہے، میرے ہی پاؤں پانی میں ڈوب جائے، اور آہستہ آہستہ یہ ٹیبل اور یہ کارپیٹ سارا پانی میں جانے لگے. جب میں نے اس کو اٹھا کر یوں کیا تو ہو سکتا ہے کہ پانی آپ تک بھی پہنچ جائے، آپ تک پہنچے، اور سیم تھنگ آپ اگر آگے کریں گے تو اس پورے ہال میں پانی آ جائے گا. اسلام چاہتا ہے منی فلیش ہو، فوارے کے نکلے ہوئے پانی کی طرح منی ہر اس بندے تک پہنچے جس کو اس کی ضرورت ہے. غریبوں کو ملے، مسکینوں کو ملے، مسافروں کو ملے، گھر والوں کو ملے، بوڑھوں کو ملے، جوانوں کو ملے. اس کے برعکس آج کا جو سیٹ اپ ہے، جس کو آپ بینکنگ سسٹم کہیں، جس کو سود کے اوپر اسٹیبلش ہوا ہوا سیٹ اپ کے، اس میں کیا ہوتا ہے، منی ادھر ہی واپس آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹا کر دیں تو پانی آپ کے اوپر ہی گر رہا ہے. چند مخصوص لوگوں کے پاس اس وقت پوری دنیا کی منی ہے، ورلڈ بینک. آپ سوچتے ہیں دنیا کے ملک امیر ترین ہیں، جیسے بڑے بڑے نام ہیں نا، امریکہ، چائنا، جاپان، آسٹریلیا، رشیا. आपको हैरत होगी कि लोग अपने आप को सुपर पावर कह लें तो कह लें, ताकत हो सकती है, हथियार हो सकते हैं, अथॉरिटी हो सकती है, यूएनओ में इनके पास राइट्स हो सकते हैं, कोई हुक्म चला दें ये कर दो, उधर जंग कर दो, सीज फायर कर दो, ये कर सकते हैं, बट पैसा नहीं है इनके पास। पैसा किधर है आज? पूरी दुनिया का कैपिटल 200 खानदान है यहूद के, जिनके हाथ में सारा पैसा। अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। अब इससे बेस करता हुआ एक बड़ा ही प्यारा असूल, जिसको जिंदगी के हर फील्ड में लगा लीजिए, वमा आता कुमर रसूल फखुजूहू वमा नहा कुमन फंतकू, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे दें वो ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। इसको हाईलाइट कीजिए, वमा आताकुम रसूल, क्या दे रसूल, रसूल जो दे ले लो, रसूल जो तरीका है जिंदगी दे वो ले लो, रसूल जो लाइफस्टाइल दे वो ले लो, रसूल जो सुन्नतें दे वो ले लो, रसूल जो दुआएं दे वो ले लो, और रसूल ने वाकई जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नक्शा दे दिया, एक नेविगेटर दे दिया कि जियो कैसे। आज हम इस आयत को सिर्फ अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें, शादी कैसे, वमा आताकुम रसूल, जो शादी करने का तरीका रसूल ने दिया हम वो ले लेंगे, शादी खूबसूरत, सादगी नहीं आसानी, सुन्नत में सहूलत है, घर में कैसे रहो जैसे रसूल रहे, तो आप देखेंगे कि पूरी जिंदगी हमारी इसके इर्द गिर्द घूमेंगी। आगे माले फै की बांट के कुछ और अहकाम, लिल फुकरा इल मुहाजरीन, फै का माल इन मुहाजिर मिस्कीनों के लिए जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं, वो अल्लाह तला के फजल और इसकी रजामंदी के तलबगार हैं, लिहाजा क्या करो, अल्लाह तला के और इसके रसूल की मदद करते हैं, यही रास बास लोग हैं, यानी सच्चे लोग तो यही हैं। अब आगे बड़ी खूबसूरत आयत है, सहाबा में से वो सहाबा के जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पे लबई कहा, हर बात को आपके लेकर कैसे चले, वल्लज़ीन तबव्वौ दार, और इनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली है, और इनकी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और मुहाजरीन को जो कुछ दिया जाए इससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद इन्हें अपने ऊपर तरजीह देते हैं, वो खुद को कितनी ही सख्त हाजत हो, बात यह कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद है, और इनके लिए जो इनके बाद आए जो कहेंगे, ये दुआ याद कीजिए दिलों के कीने बोझ दूर करने के लिए, रब्बना फिर लना वलिख्वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ हमारे दिल में कीना और दुश्मनी ना डाल, ऐ हमारे रब बेशक तू शफकत और मेहरबानी करने वाला है। कितनी प्यारी दुआ पे रुख हो रहा है आयत नंबर 10 सूरत हशर। क्या पता चल रहा है कि इस दीन को सीखने से बंदे के दिल की भी सफाई हो जाती है, दिमाग की भी, जुबान की भी, आंखों की भी, और घरों की भी सफाई हो जाती है। आगे कुछ मुनाफिकों के रवैये, अलम तर इलल्लज़ीना नाफ़क़ू, क्या तूने मुनाफिकों को ना देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिला वतन किए गए तो जरूर बिल जरूर हम तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे। अब्दुल्ला बिन उबई की बड़ी हमदर्दियां थी मुनाफिकीन के साथ, यहूद के साथ, उसी की तरफ इशारा है कि झूठी तसलियां देते थे लेकिन जब वक्त पड़ा तो उनका भी साथ ना दिया, तो लिख ले मुनाफिक अगर अल्लाह का नहीं है ना तो वो दुनिया का भी नहीं है, जो अपनों के साथ गद्दारी करता है वो गैरों के साथ भी धोखा जरूर करेगा, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह गवाही देता है क्या, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, कि ये कतन झूठे हैं, अगर वो जिला वतन किए गए तो ये इनके साथ ना जाएंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो इनकी मदद भी ना करेंगे, और अगर बिलफर्ज मदद के लिए खड़े होंगे फिर मदद ना किए जाएंगे। क्या पता चला कि कभी भी ऐसे शख्स पे एतमाद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एक लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हुई, जब राहो रस्म बढ़े तो तो एक दिन उस लड़के ने कहा कि जब तक तुम अपने बाप का सर काट कर मेरे सामने नहीं लाओगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बड़ा ही नेक शख्स था जो शादी नहीं कर रहा अभी तक, इतनी शरारत लगा रहा है। औरत अंधी हो चुकी थी उसकी मोहब्बत में। किसी तरह बिसला फुसला कर उसने अपने बाप को कत्ल करवाया और उसका सर लेके आ गई कि लो पकड़ो अब करो शादी। उसने कहा तू अपने बाप का सर काट सकती है तो तू मेरे साथ कल क्या करेगी, मैं तो तेरे से इनसिक्योर फील करता हूँ। मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का रवैया ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से इस दीन के साथ सच्चा रहने वाला बनाए। हमारी हमदर्दियाँ इस दीन से निकल गई ना तो किसी के साथ भी नहीं रहनी। मोमिन अल्लाह का होता है, मुनाफिक किसी का भी नहीं होता, चाहे वो जितने मर्जी दावे कर दे। इसीलिए फरमाया कि ये ऐसी बातें ही करते हैं, सिर्फ इनकी ये बातें ही बातें हैं, लेकिन असल बात तो क्या है कि ये सिर्फ अपने नफ्स की बातें मानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते लान तुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिन अल्लाह। मुसलमानों यकीन मानो कि तुम्हारी हैबत इनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज्यादा है। ये इसलिए कि ये बेसमझ लोग हैं, ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ ये और बात है कि किला बंद मकामात में हो या दीवारों की आड़ में हो, इनकी लड़ाई तो इनमें आपस में ही बहुत सख्त है। गो आप इन्हें मुत्तहिद समझ रहे हैं, लेकिन इनके दिल दरअसल एक दूसरे से जुदा हैं, इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। हाईलाइट कीजिए, अल्लाह ताला कहते हैं तख सबुहम जमीन व कुलूबहम शत्ता। यहूद और नसारा हो या यहूद के मुख्तलिफ कबीले हों या यहूद नसारा और मुशरकीन हो, याद रखिए ये सब आपस में भी फटे ही हुए हैं। इनके दिल एक दूसरे से भी खुश नहीं, एक कॉमन कॉज है जो इन सब को गाहे बगाहे जोड़ देती है, और वो इस्लाम दुश्मनी है। बस सीधी सी बात है, आप सलीबी जंगें देख लीजिए, क्रिश्चियंस के क्रिश्चियन ग्रुपों के साथ हुई, ज्यूस की ज्यूस के साथ, और ज्यूस की क्रिश्चियंस के साथ कितनी लड़ाइयाँ इस तारीख में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता दी कि जितना ईमान मुसलमान के अंदर होगा उतना रोब होगा। आज भी देखिए, आज हमारी हवा उखड़ी हुई है, हम फिरकों में बट गए, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हमने जिहाद छोड़ दिया, हमने तबलीग छोड़ दी, हमने दुनिया में आने का मकसद भूल दिया, और ये कोल्लू का बैल बनकर सिर्फ कमा रहे हैं, कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ आज आपके मेरे सामने? वो कौम कितनी बदबخت है कि जिसके पास इतना प्यारा नबी आए, इतनी प्यारी किताब आए, और उसके बाद वो उससे फ़ायदा ना उठाए। आज उम्मत मुस्लिमा के कितने लोग हैं जिनको ये आयतें समझ आती हैं? पढ़ने वाले आज भी बहुत है माशाल्लाह, लेकिन समझने वाले नहीं। इसीलिए फरमाया कमसलिल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इन लोगों की तरह जो इनसे कुछ पहले ही गुजर चुके, जिन्होंने अपने काम का बबाल चख लिया और जिनके लिए अलमनाक अजाब तैयार है, यानी ऐसे लोगों में से ना हो जो कमसली शैतान इस काल लिल इंसान एक फुर फलम्मा कफर काल इन्नी बरी उम्मिन। शैतान की तरह किसने इंसान से कहा कुफर करो, जब वो कुफर कर चुका तो कहने लगा मैं तो तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। हाईलाइट करें जरा शैतान के जुमले। आज लोग भी कहते बड़ा डर लगता है अल्लाह से, तो काम तो नहीं छोड़ते बुरे का। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि सिर्फ मुंह से अल्लाह अल्लाह कहने से या अल्लाह से बड़ा डर लगता है ये यकीनी बात नहीं है कि आप अल्लाह से डरते हैं। जब तक उसको गलत ना कहे, कोई सांप दिखे और बंदा कहे हाँ सांप से बहुत डर लगता है फिर पकड़ ले, तो गुनाहों से तो हमें इससे ज्यादा डरने की जरूरत है जितना कोई सांप से डरे। फकान आकिबत हुमा, बस इन दोनों का अंजाम ये हुआ कि आतिशे दोजख में हमेशा के लिए गए, और जालिमों की यही सजा है। आइए देखते हैं तदब्बर इन आयात पे। ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकि शकाई व सूइल कदाई व शमातिल आदाई, इसको याद कीजिए। अब देखिए हर वक्त हम किसी न किसी तकलीफ से आजमाए जा सकते हैं, लोग हमसे हसद कर सकते हैं, हमारी कोई दुश्मनी कर सकता है, तो इस दुआ में चार चीज़ों से पनाह है। जहदिल बला, बलाओं के उतरने से, मुश्किलात के उतरने से, बदबख्ती के पा लेने से, बुरे फैसलों से, और दुश्मनों की खुशी से। और दुश्मन कब खुश होगा? जब आपको नुकसान होगा। आज अल्लाह की रजा के लिए किसी को अपने साथ इफ्तार करवाइए। अब क्या करें, घर से किसी बंदे को पकड़ लें, वैसे ही कराना होता है, आज नियत कर लें साथ। अपने नफ्स की बहीली से पनाह के लिए दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा किनी शोख नफसी, शुख कहते हैं बुखल को, उर्दू में मांग लीजिए कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के शुख से बचा ले। कुरान से रहनुमाई, जो शख्स अपने नफ्स के बुखल से बच गया वो कामयाब हो गया। दिल में अहले ईमान के लिए बुग़्ज़ और हसद कीने से पाक रहने की हिर्स रखे, इंसान दूसरों की मुखालफत में खुद को ही तबाह कर लेता है। गौर व फिक्र, जिन दिलों में अल्लाह का रोब होता है, अल्लाह इनका रोब दुश्मनों के दिल में डालता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो अल्लाह से डरता है ना, सब उससे डरते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, बाकी भी उससे मोहब्बत करते हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह और दूसरों की नेमतों को देखकर खुश होना मोमिनों की दो अजीम सिफात हैं। बंदा अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया जाता है तो वो अल्लाह और रसूल के अहकाम पर खुश दिली से अमल करता है। यानी ये क्राइटेरियन है आपके लिए कि क्या मेरे अंदर बुखल है कि नहीं। जितना दिल की खुशी से शरीयत को मानते जाएं, उतना दिल बुखल से खाली है और इनको अपने नफ्स पर तरजीह देता है, यही फलाह और कामयाबी है। हम अपने नफ्स को पीछे करके क्या दूसरों को आगे लाते हैं? खाना तो खिलाते हैं, मेट्स को भी देते, सबको देते, लेकिन कभी अपनी मनपसंद चीज़ भी हमने उस सहाबी की तरह शेयर की है ही खाना एक का? हम तो कहते कुछ पकाया ही नहीं, आज तो खाना ही नहीं। अल्लाह के बंदो, फ्रिज बंद नहीं हो रही, पेंट्री तुम्हारी ऊपर तक ओवरफ्लो हो रही है, फ्रीजर के ऊपर खड़े हो गए तुम्हें बंद करना पड़ता है, और तुम कहते हो आज तो घर में खाने को ही कुछ नहीं, जल्दी करें इफ्तारी बनानी। एटलीस्ट 3-4 दिन तक अगर हम कुछ ना बनाएं, किचन भी खाली, फ्रिज भी खाली, फ्रीजर भी खाली, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को रोजे का मकसद समझ आएगा। और इसके लिए अब आपको उनको जहनी तौर पे तैयार करके ये काम करना है। हमने अक्सर ये सोच लिया हुआ है कि बच्चों को खिलाना ही सिर्फ मकसद है, तरबियत नहीं हो पाती। हमारी सलफ सालीन की माएँ अपने छोटे गोद के बच्चों को रोजा की नीयत से दूध पिला के फिर छोड़ देती थी और बच्चों को मस्जिद में ले आती, और अगर बच्चे रोते दूध ना मिलने की वजह से तो उनको गुड़िया से बहलाती। ये माएँ तरबियत करती थी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही बना दे। फिर इसी तरह से खालिक का खौफ, इस उम्मीद और मोहब्बत को दूसरी तमाम चीज़ों पर मुकद्दम रखना, असल में यही समझदारी है। अल्लाह हमें बना दे। आगे जो आखिरी रुकू सूरत हशर का, जो बहुत ही अहम है, बहुत खूबसूरत है, इसके तर्जमे को इंजॉय कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। पहले आप नोट कीजिए, अरबी में से 2 दफ़ा इस एक आयत में इत्तकुल्लाह का लफ्ज़ है। ऐसे लगता है इत्तकुल्लाह की 2 ब्रैकेटें हैं और बीच में एक मैसेज है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देखभाल ले कि कल क़यामत के वास्ते इसने आमाल का क्या ज़खीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। और तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने भी इन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया, और ऐसे ही लोग नाफरमान और फासिक हैं। इसमें जो लफ्ज़ लिगत है, इसके साथ हमारी बड़ी एसोसिएशन है। आज से तकरीबन 15 साल तो हो ही जाएंगे, आई थिंक सो, नॉर्वे में जब अल्लाह ताला ने काम लिया, जैसे इधर दौरे कुरान हुए वहाँ भी दौरे कुरान हुआ, उसके बाद उसी दौरे कुरान के दौरान एक तड़प थी, एक तलब थी कि आगे भी यहाँ कुछ काम करना है, और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फिर वहाँ नया कोर्स शुरू करा दिया रमज़ान के बाद का, और उसके बाद फिर अल्लाह ने हमें वो दिया जिसमें इस वक्त हमारा स्कूल है। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, हमारे पास कुछ था ही नहीं, नया नया काम, 1 साल 1.5 साल का काम था, लेकिन अल्लाह ने वहाँ फिर हमें वो बिल्डिंग दी जो आज तक पिछले 15 साल से दयारे गैर में इस्लाम को सर्व कर रही है। तो हमेशा अल्लाह से दुआ करें, और उस प्रोजेक्ट का नाम लेगा था असल में, ला यस्तवी असहाबुन नारी वअसहाबुल जन्ना, अहले नार और अहले जन्नत बाहम बराबर नहीं, वह अहले जन्नत हैं वही कामयाब हैं, जो अहले नार हैं वो नाकाम है। यह है जी 2 लफ्ज़ों की कहानी। पीछे भी हमने पढ़ा था कि फरीकु फिल जन्ना व फरीकु फिल नार। आपकी मेरी जिंदगी की डोरी जब टूटेगी तो उसके बाद हमारे पास 2 में से 1 ही रास्ता चूज करना होगा, और इख्तियार खत्म हो चुका होगा। आज कर लीजिए, जो नेकी कर सकते हैं कर लें, जो खैर का काम कर सकते हैं कर लीजिए। लव अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिया मुतसद्दिया मिन ख़शयतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। इस वक्त आप वो कुरान पढ़ रही हैं जो पहाड़ भी न सह सके, और कल्बे मोहम्मद ने उसको सह लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई छोटी चीज़ है, ये कोई फकीर की सदा है, ये रब का कलाम है। बल व कलाम अल्लाह, अल्लाह में इस किताब के लिए चुन ले। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अलीमुल गैबी वश्शहादा, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपे खुले का जानने वाला और मेहरबान और रहम करने वाला। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बादशाह नहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह इन चीज़ों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। वही है अल्लाह पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। इसी के लिए नहायत अच्छे अच्छे नाम हैं। इतने अल्लाह के नामों का इकट्ठा सुनना कैसा लग रहा है आपको? ऐसे नहीं लगता कि उस जैसी कोई हस्ती नहीं है? लिहाजा मान जाओ कि युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, हर चीज ख्वाह वो आसमानों में हो ख्वाह जमीन में हो, इसकी पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नामों का इकट्ठा सुनना इंसान के दिल पे जरूर असर डाले। चलिए तदब्बर और अमल देखते हैं आयत 18 से। अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के मामलात पर गौर कीजिए और पिछली ज़िंदगी की इबादात पर अल्लाह का शुक्र और गलतियों पर मग़फ़रत तलब करें। 3 सेकंड देती हूँ, आप सोच के माफ़ी मांग लें। घर में दाखिल होने, घर से निकलने की दुआ और सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें, यह आपको शैतान से बचाएंगी। किसी मोमिन के लिए अपने दिल में नफरत और बुग़्ज़ नहीं रखना, क्योंकि जो दिल अल्लाह के पास लेके जाना है वो कल्बे सलीम होगा। अब घर गंदा हो और मेहमान आ जाए तो कैसा लगता है? बस दिल गंदा हो तो अल्लाह की मोहब्बत, फरिश्ते कैसे आएंगे? तो अपने दिलों को चेक कीजिए कि क्या यहाँ फरिश्ते आते होंगे? क्या यहाँ अल्लाह अगर अपनी मोहब्बत ले आए और अगर हमारे घरों में नफ़्स सल्लम आ जाएं, तो क्या वो इस काबिल हैं कि हम अपने नबी को वेलकम कह सकें? अपने घर से हर वो चीज़ चुन चुन कर निकाल दीजिए कि जो फरिश्तों को आने से रोक रही है और अल्लाह ताला की मोहब्बत वहाँ आकर महसूस ही नहीं होती। देखिए मस्जिद साफ हो ना, फिर ही दिल लगता है इबादत में। इसी तरह से दिल साफ हो तो इबादत करने में दिल लगता है। फिर कुरान से रहनुमाई, या मैं आखिरत की याद और अल्लाह की अजमत का एहसास तकवा पैदा करने का सबब है। तिलावत कुरान के दौरान अपने अंदर खुशी और खुदू पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस महफिल में आप पिघली हुई मोमबत्ती की तरह होते हैं। जो फैसला करना है ना यहाँ किया करें, जो इरादा करना है यहाँ करें, जो दुआ करनी है वो यहाँ करें, क्योंकि यहाँ से वो बाहर जाने तक तो बस ही ठंडी हो जाएगी। ईमान की भी हरारत कुरान पढ़ने के दौरान जो महसूस होती है वो बाद में कम हो जाती है। हज़रत हंजला की भी इस पर एक मिसाल मौजूद है, आप सबने सुना भी होगा वो किस्सा। अल्लाह के सामने जवाबदेही से डरना है और इसके लिए अपनी आखिरत की फिक्र आज ही करनी है। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, एक क्वेश्चन है कि बताओ कल के लिए क्या तैयार किया? सोचिए अगर आज ही रात मौत आ जाए, कल यहाँ आने से पहले मैं कब्रिस्तान में पहुँचा दी जाऊँ, क्या मैं अल्लाह का सामना करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैंने अपनी सारे मामला सुधार लिए कि अगर अचानक मौत आ जाए तो घर वालों को पीछे वालों को मुश्किल ना हो? हर वक्त इस मौत के लिए तैयार है। आपने फरमाया तेरी ज़िंदगी में सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार ना कर, शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना कर, अपना शुमार मुर्दों में कर ले। गौर व फिक्र के गोशे अपने नफ्स का मुहासबा करते रहें, कमी कोताही पर अल्लाह से खालिस तौबा करें और अहकाम पर अमल के लिए अल्लाह से मदद मांगें। अपने नफ्स से गाफिल इंसान फिस्क व फजूर की आखिरी इंतहा को पहुँच जाता है। नफ्स की गफलत से अल्लाह की पनाह मांगनी है। कुरान के मवाइज़ पर तदब्बुर करना है, क्योंकि रोज़े क़यामत तरके तदब्बुर का कोई उज़र काबिले कबूल नहीं होगा। यानी खुलासा कह के कुरान पे तदब्बुर भी करना है, ये भी इबादत है। और इस साल आप देख रहे हैं कितने नुक्ते निकलते हैं, और अभी भी यकीन कीजिए बड़े कंसाइज करके आपको दिए जा रहे हैं वक्त की कमी की वजह से, वरना तो शायद हर आयत में तदब्बुर के नुक्ते निकालें तो हमारा पारा कई घंटे पे चला जाए। लेकिन सिर्फ आपको सोचने का एक अंदाज दिया जा रहा है।